मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल में हूँ।
अभी शरीफ में ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद है जो शख्स इल्म हासिल करे उसके सबब से लोगों पर फख्र करे तो वो जहन्नम में जाएगा। तो ऐसा इल्म वाला जो दूसरों की बिला वजह तजहील करे और अपने इल्म पर फख्र करे कि मेरे सामने क्या बेचता, तो जाहिल जाहिल। तो फिर ऐसा शख्स जो अपने इल्म पर तकब्बुर करे और दूसरे की तहकीर करे, दूसरों पर अपने आप को फख्र जताए जरूर करे, और आजकल बदकिस्मती से इसकी नजीरें मिलती है बदकिस्मती से। तो इसलिए इल्म की जीनत जो है मेरे सही भाइयों वो है आजिजी इनकी सारी, वरना जो तकब्बुर है तकब्बुर इल्म को खा जाता है, इल्म की बरकतें उससे नहीं रहती। जैसा कि एक हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है कि कियामत के रोज एक शख्स पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसको अपनी नियमतें याद दिलाएगा, तो वो तस्लीम करेगा और पूछा जाएगा इसके बस तूने क्या किया, वो कहेगा कि मैंने तेरे लिए इल्म हासिल किया। तो इरशाद फरमाया जाएगा तो झूठा, तूने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग तुझे कारी कहा करें, आलिम को भी कारी कहते, तुझे अल्लामा कहा करें। दोबारा ये कि तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि इस इल्म के जरिए तू इज्जत हासिल करे, तुझे इज्जत ना लोग तुझे कारी का। सो कह लिया गया, तुझे लोगों ने कह दिया, उसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं इसीलिए मना किया करता हूँ कि जो हिफ्ज करे वो बिला वजह ये ना बताए कि मैं हाफिज कुरान, जो किराअत का कोर्स कर भी ले बिला जरूरत अपने आप का कारी होना शो ना करे। इसी तरह दीगर मामला जैसे हाजी हज किया, अपने आप को अपने मुंह से हाजी न कहे ना लिखे। इसी तरह खतीब व इमाम है किसी मस्जिद का, तो अपने आप को खतीब व इमाम लिखते वक्त भी गौर कर ले, क्योंकि मामला बड़ा नाजुक है, हो सकता है लोगों से नाराज हो जाते होंगे, लेकिन मतलब मेरा मकसद ईमान से इस्लाह, ईमानदारी की बात है कि अपनी और दूसरे सही भाइयों की इस्लाह, क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, मजहबी फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मुझे पता है कि अपने आप को खतीब बल्कि सिर्फ खतीब ही कहा जाता है, इमाम भी कहने में शायद झिझक होती है, फला खतीब खतीब आजम मौज़िन कहते हुए शर्माता आदमी, तो अब मौज़िन के बजाय अब हमारे यहाँ नाइब इमाम कहते हैं। समझ से बाहर है मेरी, तो मैं कहता हूँ मौज़िन होना ज्यादा मौजू लगता है कि हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को मौज़िन होने का शरफ हासिल था। तो नाइब इमाम के अल्फाज में हो सकता है कुछ कशिश हो, लेकिन मैं समझता हूं कि मौज़िन होने में इश्क रखने वाले कानों में ज्यादा कशिश है। अगर कोई ये पता चले कि फुना मौज़िन है तो यार ये तो मतलब यानी कि सुन्नत बिलाली अदा कर रहा है। खैर समझ समझ की बात है, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि मैं इस फील्ड से वाकिफ हूं, तो मुझे पता है कि अगर अपने आप को खतीब या इमाम पेश इमाम जाहिर किया तो लोग इज्जत करते, दस्तबोसी करेंगे, इज्जत करेंगे, सौदा सस्ता देंगे, नहीं नहीं मुफ्त दे देंगे, यानी कि मोहल्ले का हो और सौदा लेने गए वो जानता नहीं तो तारुफ करवाने के मैं फुला मस्जिद में इमाम, अच्छा माशाल्लाह इमाम साहब है, अरे आपसे क्या, अरे ले जाए, अरे अरे नहीं, अरे ले, अरे नहीं, तो फिर आखिर जज़ाक अल्लाह करके वो सरका लिया। तो अपने आप को इमाम बताया तो उसने मतलब इतनी इज्जत दी ना, और अल्लाह वाले अपने आप को छुपाते रहे, अल्लाह वालों के वाकयात तो बड़े अजीब गरीब मिलते हैं। जैसा कि एक बुजुर्ग अपनी इज्जत खत्म करने के लिए, ये मलामतिया कहलाते हैं हजरा, लोगों में अपने आप को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि बस समझ से बाहर, ये उन्हीं का हिस्सा होता था। तो लोगों के देखा देखी एक कोट उठाया किसी नमाजी का और लपेट लिया, कोट या चादर या बरल लपेट ली और चलते बने, लोग तो देख ही रहे थे, मकसद चोरी करना भी नहीं था, तो लोगों ने तो पकड़ लिया और खूब उठा पटक हुई, खूब इनको पीटा, और वो खुश हो रहे थे कि मैं इस तरह खुद फरमाते मैं इस तरह मस्जिद का चोर मशहूर हुआ। अब ये कहे थे वलीयुल्लाह, तो अपने आप को मस्जिद का चोर मशहूर करवा कर इनकी ड्यूटियां होती हैं, साहिब मनसब होते हैं हजरात, कि इस तरह वो मतलब लोगों से लोगों की नजरों में अपनी तवलील करवा कर भी कोई मकसद पूरा करते हैं अपना, ये ड्यूटियां होती हैं कि अगर लोग इज्जत करेंगे तो हो सकता है कि वो बात हासिल ना। तो बाज़ अहलुल्लाह अपने आप को छुपाते हैं, इसी तरह मदारत को लेकर किसी मदार पर तो बड़ा रश होगा, बड़ा हुजूम होगा लोगों का और किसी मजार पर लोगों का रुख ही नहीं होता। हालांकि अवाम को फजाइल नहीं पता होता, ये हकीकत की बात है, अवाम को फजाइल नहीं पता होते कि इस मजार पर जो वलीउल्लाह इस मजार में है इनका ये मकाम है और फुला वलीउल्लाह का ये मकाम है और फुला वलीउल्लाह का ये मकाम, क्या आदमी देंगे? और अपने पड़ोस में जो मजार है किसी बुजुर्ग का उस पर गुजरते हुए सलाम भी नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है कि ये जाम सफर करके जा रहे हैं उनसे बड़े वली हों, हमारे पास तो कोई पैमाना है भी, तो ये बुजुर्गों के हाथ में समझो के दिल होते हैं लोगों को, वो जिस तरह चाहते हैं मतलब इनको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। जैसे कि हमारे मुर्शिद पाक सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि एक आपके मुरीद फरमाते कि मैं हुजूर गौस पाक के साथ जुम्मे की नमाज के लिए चला, तो मैं हुजूर गौस पाक के बिल्कुल करीब करीब साथ ही चल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई हजरत की दस्तबोसी नहीं करता था, तो मेरे दिल में ये बात आई कि आज तो नहीं, क्या बात है कि हम बड़ी आसानी में जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही, इतने में चारों तरफ तो लोग टूट पड़े और दस्तबोसी और कदम बोसी, और मुरीद साहब कहते हैं कि मुझे तो धकेल कर लोगों ने किधर डाल दिया। तो मेरे दिल में ये बात आई कि इससे तो पहली हालत ही अच्छी थी कि मैं अपने मुर्शिद के करीब तो था, फिर वो बिल्कुल आवाम छट गई और मैं हजरत के साथ साथ चलने लगा, मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर फरमाया कि अल्लाह तआला ने लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में कर दिए कि जब चाहते हम दूर कर देते लोगों को, जब चाहते हम बेफास में डाले। तो बात हो लिया कि राम को मतलब हुजूम और झुरमट का दो होता है कि इस तरह लोगों को वो फैजियाब करते हैं और उनकी आखिरत की बेहतरियां देते हैं, और बाजों को बस वो खलबत पसंद होते, जलाल होता है उनको, किसी को करीब नहीं आने देते। ये मतलब बुजुर्गों का अपना अपना मिजाज होता है, कोई जलाली होता है, कोई जमाली होता है, कोई हुजूम करके मतलब उनमें फैज लुटाता है, कोई दूर दूर रखकर अपना मतलब हिसाब किताब पूरा करता है, तो ये अपना अपना मिजाज होता है। और पीर पकड़ने में कोई खर्चा फी जमाना तो होता नहीं, पहले तो बड़े सफर किए जाते थे पीर की तलाश में, अब तो लोगों का जहन ही नहीं है, अब तो वसवसे घेरते हैं कि मुरीद बनेंगे तो ये करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा, अपने तो इस काबिल ही नहीं है जो मुरीद बन सके, फिर इस तरह शैतान वसवसे डालकर उसको दूर कर देता है। अगर कोई खर्चा नहीं, पाई पैसा लगता नहीं, अगर कोई पीर मिले अच्छा तो उससे जरूर हमें निस्बत कायम करनी चाहिए, ये 100% प्रॉफिट है, वरना कारोबार में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पहलू होते हैं, नफा नुकसान, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें नफा ही नफा नुकसान नजर नहीं आता, अगर पीर कामिल मिल गया तो नफा ही नफा, और अगर कोई बेशरा पीर मिल गया, गैर शरई हरकतें करता है, यानी वो पीर शरअन कामिल, शरअ अपने वसवसे से नहीं, वाकई वो कामिल नहीं, तो उसकी बैत भी तोड़नी चाहिए, यानी शरण उसमें अगर शराइत मौजूद नहीं है, मतलब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने चार शराइत बयान की, एक तो पीर सहीहुल अकीदा सुन्नी हो, दूसरा पीर की शर्त उसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता हो तरीकत में, यानी कि सैयद होना काफी है, सैयद होना काफी नहीं तरीकत में, मसलन कादरी सिलसिला, तो कादरी सिलसिला ये चारों सिलसिले जो ना कादरी नक्शबंदी सोहरावर्दी और चिश्ती ये सब के सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलते हैं, तो कादरी सिलसिला मौला मुश्किल कुशा अलीगुल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम तक पहुंचता है और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है कि सरकार के खलीफा थे मौला मुश्किल कुशा। तो इस तरह मतलब ये कि बीच में सिलसिला कहीं मुनकते नहीं होना चाहिए, पीर ऐसा हो कि जिसका सिलसिला मुनकते नहीं होना चाहिए बीच में, जैसे खुद ही दावा कर दिया और फिर उससे सिलसिला चल पड़ा और आगे जाकर वो मुनकता है सिलसिला उसका, तो ऐसा शख्स पीर नहीं बन सकता, उससे मुरीद नहीं हो सकते, बैत जायज नहीं। तो एक तो ये कि वो सही उल अकीदा सुन्नी हो, दूसरा सिलसिला उसका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता, तीसरा वो आलिम हो, आलिम की डेफिनेशन आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बयान फरमाई कि तमाम अकायद से वाकिफ और जरूरत का मसला बगैर किसी की मदद के किताब से ढूंढ सकता हो, अफवाह रिजाल या कुतुब बीनी से भी आलिम बन सकता है, ये भी आला हज़रत फरमाया, यानी किताबें पढ़ पढ़ कर आलिम बन सकता है, सुन सुनकर आलिम बन सकता है, मतलब है कि मदरसे में दाखिला और दरसे निजामी की सनद शर्त नहीं, वरना बहुतेरे दरसे निजामी पढ़े हुए तजर्बे की बातें देखें तो उन बिचारों को कुछ भी नहीं पता, बल्कि आजकल तो बाज मदारिस से वैसे ही घर बैठे जितनी चाहे सनदें मिल जाती, तो सनद शर्त नहीं, वरना सहाबाए किराम ने कहा दरसे निजामी किया था, उनके पास कौन से भी सनद थी, लेकिन खुदा की कसम उनके पास ऐसे ऐसे उलूम होते थे कि रूए जमीन के सारे उलमा मिलकर उनके इल्म का कोई जर्रा नहीं पा सकता। साहबा इकराम इतने बड़े आलिम होते थे लेकिन वो किसी दारुल उलूम से फारिग तो नहीं होते थे। तो ये सिर्फ आपकी तफहीम के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल कॉन्सेप्ट ये है। तो ये शरई जरूरी नहीं है कि किसी के पास सनद हो वो आलिम। आलिम के लिए इल्म चाहिए, सनद शर्त नहीं। अब सनद है और इल्म नहीं है, या वैसे ही दो नंबर की सनद ले ली। जैसे औकाफ की मस्जिदों में बाज लोग नौकरी करने के लिए सनद शर्त रखी हमारे गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट की शर्तें तो ऐसी होती है जो दो नंबर से ही पूरी होती है, तो वो दो नंबर की सनदें भी मिली जाती है। कई मदरसे से होते जो दे देते हैं, पैसों से भी मिल जाती होंगी। इस तरह मतलब ये कि दारुल उलूम में पढ़ना चाहिए, इसका इनकार नहीं है। इल्म हासिल करना चाहिए कि इल्म के मराकज है और इससे इल्म हासिल होता है। लेकिन मैं ये अर्ज ये कर रहा था कि इस दारुल उलूम ही से इल्म हासिल होता है ये जरूरी नहीं है। आला हज़रत ने इसका रद्द फरमा दिया कि सुन सुनकर भी इल्म हासिल होता है, किताबें पढ़कर यानी पर्सनल स्टडी, कुतुब बीनी, खुद किताबें पढ़ ले अपने तौर पर, तो इससे भी इल्म हासिल हो सकता है। और आलिम की तारीफ ये इरशाद फरमाई कि तमाम तरह अकायद से वाकिफ हो, अपनी जरूरत का मसला बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल सकता हो वो आलिम। फासिक मौलिन ना हो, यानी अलल एलान कबीरा गुना ना करता हो। चौथी शर्त ये बयान फरमाई पीर की, तो यानी कि शेव्ड है वो फासिक मौलिन कहलाता है, एक मुट्ठी से दाढ़ी का तरवा देता है वो भी फासिक मौलिन है अल्लाह तआला के नजदीक। इसी तरह फिल्म में देखे, ड्रामे देखे, झूठ बोलता हो, गीबतें करता हो, कबीरा गुना करता हो, या सगीरा पर इसरार करता हो, या सगीरा को हल्का जानकर किया कि सगीरा है, तो सगीरा को हल्का जानने से वो अशद कबीरा हो जाता है, वो सख्त कबीरा गुना बन जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया, हो करम मुश्किल में हूँ सरकार मैं मुश्किल।